السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا میزبان حارث خلیق اور پوڈ کاسٹ کی وہی سیریز جو ہم پاکستان کے قیام کے 75 سال کے موقع پر آپ کے لیے لائے ہیں وائس آف امریکہ کی جانب سے، اور اس پوڈ کاسٹ کی یہ جو لڑی ہے اس کی آج جو کڑی ہے وہ ریڈیو اور پاکستان سے متعلق ہے۔ اس میں ایک وضاحت کر دوں کہ ریڈیو پاکستان سے متعلق نہیں، بلکہ ریڈیو اور پاکستانی سماج، سیاست، فنون، ان سب سے جو ریڈیو کا تعلق ہے۔ اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ دیگر ملکوں سے جو نشریات ہوتی رہی ہیں اردو میں یا دیگر زبانوں میں، پشتو میں خاص طور پر، تو ان کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہمارے یہاں سیاست پر اور سماج پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ریڈیو نے پچھلے 75 برس میں ہم تک خبریں بھی پہنچائی ہیں، گیت بھی پہنچائے ہیں، اور ایسی ایسی آوازیں ہم تک پہنچائی ہیں جو کسی اور میڈیم کے ذریعے سے، کسی اور ابلاغ کے ذریعے سے ہم تک نہیں پہنچی۔ خواہ وہ مصطفیٰ علی ہمدانی کی جانب سے صبح آزادی کے طلوع ہونے کی نوید ہو، یا سن 1965 کی پاک بھارت جنگ میں نور جہاں کے ملی نغمے ہوں، ترابی صاحب کی مجلس ہو، یا ناصر جہاں صاحب کی کا سلام آخر اور دیگر کجل بیگم کے سوز و سلام ہو، مہدی حسن کی غزل ہو، زاہدہ پروین کی گائی ہوئی کافی ہو، یا استاد سلامت علی خان، نزاکت علی کی خیال کی گائیکی ہو، ریڈیو پاکستان نے اور دیگر پھر جو اور نجی شعبے میں ریڈیو آئے، انہوں نے ہمارے اجتماعی غم اور سانجھی خوشیوں کو سب کے ساتھ بانٹا ہے۔ لیکن ریڈیو اور پاکستان کا رشتہ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین سے لے کے اور حامد میاں کے ہاں اور تنقین شاہ اور کہاں کہاں تک پھیلا ہوا ہے، اور صرف یہ خبروں کا ایک سلسلہ نہیں ہے۔ ساتھ ہی ہم کوشش کریں گے کہ آج ایف ایم سٹیشن سے متعلق بھی گفتگو کریں، جو ایف ایم ریڈیو فریکوینسی ماڈیولیشن کہتے ہیں غالباً اسے، جو اے ایم کے بجائے میڈیم ویو، شارٹ ویو اور سے ہوتے ہوتے ایف ایم تک ہم پہنچے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور اس دلچسپ گفتگو کے لیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاصی معلومات افزا ہوگی، ہمارے جو مہمان ہیں، بہت ہی معزز مہمان، جناب عارف وقار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عارف وقار صاحب کا تعلق ریڈیو پاکستان، پاکستان ٹیلی ویژن، وائس آف امریکہ اور بی بی سی اردو سے، بی بی سی لندن اردو سے رہا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ ماہر لسانیات ہیں، اور ان کے جو لکھے ہوئے اور ڈائریکٹ کیے ہوئے ڈرامے ہیں انہوں نے بھی بہت شہرت حاصل کی، مثلا دبئی چلو، مثلا برزخ۔ اس کے علاوہ بھی ان کی ایک بڑی کانٹریبیوشن صداکاری میں بھی رہی ہے۔ عارف وقار صاحب، میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور تشریف لائے، ساتھ ہی ان کے ہمارے دوست اور صحافی، اور پھر اب بی بی سی لندن سے کوئی 20 برس سے وابستہ جناب ثقلین امام ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ثقلین کی بڑی گہری نظر ہے پاکستان کی سیاست اور سماج پر، ادب سے گہرا تعلق ہے، بہت شغف رکھتے ہیں، یہ فنون لطیفہ میں ان کی دلچسپی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے پاکستان میں جو نئے ٹرینڈز ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں، ان سے بھی بخوبی واقف ہیں، اور ساتھ ساتھ چونکہ بی بی سی لندن سے وابستہ ہیں، اس لیے جو عالمی طور پر ریڈیو بحیثیت ایک ٹیکنالوجی یا ریڈیو بحیثیت ایک میڈیم، اس کی جو صورتحال، نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس پر بھی ان کی نظر ہے۔ ثقلین، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے۔ میں عارف صاحب آپ سے اگر ابتدا کروں، پہلا سوال کہ کچھ ذرا تھوڑا سا ریڈیو پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں، چونکہ آپ کی غالباً پہلی ملازمت بھی وہیں تھی، اور آپ کا ایک تعلق بھی رہا، آپ نے جو اکابرین تھے ریڈیو کے زوما، ان سے بھی آپ کی واقفیت رہی۔
جی ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اصل میں میرے والد صاحب جو تھے، وہ جب ریڈیو شروع ہوا تھا لاہور کا، تو جو سب سے پہلے 2-3 براڈ کاسٹر تھے، ان میں میرے والد صاحب بھی شامل تھے،
وقار مالوی صاحب۔
جی، اٹ واز ان 1936۔ اچھا، لیکن اس سے پہلے 1923 میں ٹرانسمیشن جو ہے وہ تجرباتی شروع ہو چکی تھی، یعنی مشترکہ ہندوستان میں، غیر منقسم ہندوستان میں، اور یہ شروع ہوئی تھی بمبے سے۔ پہلے انہوں نے بمبئی میں ٹرانسمیشن کا تجربہ کیا 1923 میں، اور جب وہ کامیاب ہو گیا تو کچھ 6 ماہ کے بعد انہوں نے کلکتہ میں ایک ریڈیو اسٹیشن بنایا تجرباتی، اور اس کی رینج تو ظاہر ہے بہت کم تھی، لیکن یہ پہلی دفعہ تھا کہ لوگوں نے ریڈیو کے اوپر گفتگو سننی شروع کی، اور ان کو پتہ چلا کہ یہ بھی ایک ذریعہ ہے کمیونیکیشن کا۔ तो ये तो 20s की बात है, लेकिन
1923 यानी हम 2022 में हैं, तो
100 साल
की बात हुई तकरीबन,
तकरीबन 100 साल हो गए। अच्छा, ये तो इब्तदा थी। अब जो इलाके इस वक्त पाकिस्तान में हैं, यहाँ पे जो इब्तदा हुई ट्रांसमिशन की वो मिड 30s में हुई, 1936-37 में, जब पेशावर और लाहौर में रेडियो स्टेशन खुले। अब लाहौर में तो समझ में आता है जी, एक कल्चरल मरकज था शुरू से और तालीमी मरकज भी था, और यहाँ पे रेडियो स्टेशन का खुलना बड़ी फितरी बात थी। लेकिन पेशावर कहाँ से आ गया बीच में, ये लोग पूछते हैं। ये सबसे पहले लाहौर में तो खुलना समझ में आता है, साथ पेशावर का दम छल्ला कैसे लगा हुआ। तो बात यह है कि अंग्रेजों को शुरू से एक हवा था रूस का कि वो कहीं अफगानिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान तक ना पहुंच जाए, ये बहुत बड़ा खौफ उनका चल रहा था। लिहाजा जितनी भी आप अस्करी तैयारियां उनकी देखते हैं, मतलब किले वगैरह बनाना, हिफाजती हिसार बनाना, वो तमाम कबायली इलाके में, शुमाली इलाके में ये कार्रवाइयां अंग्रेजों की जारी थी। और इसी सिलसिले की एक कड़ी फिर बाद में जो प्रोपेगेंडा का मुख्य मुहिम शुरू हुई, तो उसमें उन्होंने देखा कि ये सरहदी इलाका जो है इसको बचाना है रूसी प्रोपेगेंडे से। और बाद में फिर जब जंग शुरू हो गई, जो दूसरी जंग शुरू हुई, तो उसमें ये था कि जापान और जो जर्मनी ने बड़ा ज़बरदस्त प्रोपेगेंडे का स्टेशन कायम किया,
जो 1939 से 1945 तक होने वाली दूसरी जंग अजीम,
दूसरी जंग। तो 1939 में इसने, जर्मनी ने बहुत बड़े पैमाने पे हिंदुस्तानियों के लिए प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी थी। उसे काउंटर करने के लिए अंग्रेजों ने फिर सोचा कि हम भी हिंदुस्तानी जबान में एक काउंटर ड्राइव यहां से चलाएं। तो उसके लिए उन्होंने बुखारी साहब, जो छोटे बुखारी साहब, जैडे बुखारी, उनको लंदन बुलाया। उनके साथ बलराज सहनी और कुछ और अफराद भी थे, लेकिन लीडर जो थे वो बुखारी साहब थे। तो 1939 में बुखारी साहब ने लंदन से जाके हिंदुस्तानी नशरियात का आगाज किया,
बीबीसी की
यानी उस वक्त तो हिंदुस्तानी नशरियात कहलाती थी 1939 में। और उस वक्त उसका मकसद जंग का प्रोपेगेंडा था और जो जर्मनों का प्रोपेगेंडा था उसको काउंटर करना मकसद था बुनियादी, क्योंकि वो जंग के हालात थे तो जंगी हिकमत अमले का ये एक हिस्सा था। तो यहाँ से हिंदुस्तानी नशरियात की इब्तदा हुई, जो कि ये बरतानिया में हुई। और जब वो ट्रांसमिशन पहुँचती थी वहाँ, तो जाहिर है कि सुनते थे उसे बड़े पैमाने पर लोग। तो फिर बुखारी साहब जब वापस आए, हिंदुस्तान वापस आए, वो जाहिर है उस वक्त तो हिंदुस्तानी था, पाकिस्तान तो नहीं था। तो फिर ये हुआ कि जैसा कि मैंने कहा कि 1936 और 37 में पेशावर और लाहौर के स्टेशन शुरू हो चुके थे और इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। तो जो इब्तदाई ज़माना था वो तो चूंकि जंग 39 में जंग शुरू हो गई, तो बहुत सी कोशिश जो है वो, यानी जो वार एफर्ट थी उसमें लग गई उस वक्त। लेकिन जब जंग ख़त्म हुई 45 में, तो उस वक्त तक ज़ाहिर हालात बदल गए थे और अमन का ज़माना आ गया था। तो फिर एक बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल शुरू हुई ट्रांसमिशन की, जिसको ज़माना अमन की ट्रांसमिशन आप कह सकते हैं
1945 में। और फिर 47 में पाकिस्तान कायम हुआ और रेडियो पाकिस्तान से ऐलान हुआ पाकिस्तान के बनने का।
एग्जैक्टली।
और तो बुखारी साहब की कुछ यादें, या बुखारी साहब की कोई, चूंकि बुखारी साहब तो एक बहुत ही, जैसे कहना चाहिए कि बाग बहार शख्सियत थे, और साथ साथ उनका बड़ा रोब था, और वो पाकिस्तान में पहले रेडियो के मुंतजिम मुकर्रर हुए
जी। उनके बड़े भाई जो थे
पितरस बुखारी,
वो चूंकि ऑल इंडिया रेडियो के सरबराह आला थे, उनको खास तौर पर बुलाया गया था इस काम के लिए, तो उन्होंने अपने छोटे भाई से भी काम लिया। तो इनके जो मुखालफिन थे, उन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये बुखारियों का कब्जा हो गया रेडियो पे, तो ऑल इंडिया रेडियो बुखारियों के खानदान की मिल्कियत,
बुखारी ब्रदर्स।
तो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो का नाम बुखारी ब्रदर्स अनलिमिटेड रख दिया,
ठीक है,
ये बताने के लिए कि ये बुखारियों ने अपने भाई बंद जो है वो इकट्ठे कर लिए। और ये हकीकत भी थी कि देखिए, मंटो साहब, कृष्ण चंद्र, नून मिमरा, ये सब लोग ऑल इंडिया रेडियो के मुलाजिम हो गए थे। तो
फैसा भी।
अच्छा, तो बुखारी साहब, बड़े बुखारी साहब, इस प्रोपेगेंडे का, इस तनकीद का जवाब, ये बड़ा मजेदार जवाब देते थे। वो कह रहे थे कि बेवकूफ दुश्मन से अकलमंद दोस्त बहरहाल बेहतर होता।
दिलचस्प बात है। अच्छा तो बुखारी साहब फिर जब जो जेडे बुखारी साहब हैं वो सदाकार भी तो गैर मामूली थे।
हाँ,
यानी जो तहत लफ्ज़ उन्होंने कलाम पढ़ाया मरसिए पढ़े
जी,
तो और लेकिन साथ साथ उनके और भी बहुत लतीफ़े हैं जो लोगों को यानी जिस तरह से वो अपनी मैनेजमेंट चलाते थे और जिस तरह से उनके फनकारों शोरा अदबा के साथ ताल्लुकात थे।
जी हाँ, ये दोनों भाइयों के बहुत से वाकयात हैं। जो बड़े बुखारी साहब थे वो चूंकि बड़े बजला साइंस थे, जाहिर है उनका तो नाम है मिजाज है पूरा। तो एक मर्तबा एक खातून सिंगर जो है वो ये गा रही थी गालिब की गजल, कह रहे हया तो बंदे गम असल में दोनों एक हैं, लेकिन वो पढ़ इस तरह रही थी कि कह दो हया तो बंदो गम, तो असल में बुखारी साहब ने आके फिर वहां से लुकमा दिया, ये असल में चारों एक हैं।
कह दे हया तो बंदे गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों।
लेकिन वो
उसे गा रही थी कह दो
हया तो बंदो गम चारों एक, एक लाइन में चारों तो उनका हाँ बिल्कुल असल में चारों एक है। तो इस तरह के लताइफ होते रहते थे
जी
के यहाँ। तो जो छोटे बुखारी साहब थे वो जरा थोड़े सख्त मिजाज थे और उनकी तबीयत में उस तरह की बदला संजी नहीं थी बड़े भाई जैसी, तो उनकी सख्त गिरी के भी बहुत से वाकयात हैं। जो बड़े गुलाम अली खान पाकिस्तान से इंडिया चले गए तो उनके बारे में बताया जाता है कि जो जिस तरह की इज्जत और तकरीम उनकी होनी चाहिए थी रेडियो में वो बुखारी साहब ने नहीं की। और सुबह उनको लेने के लिए गाड़ी आती थी तो जिसमें वो गवैये और कवाल आते थे जिस गाड़ी में, उसी में वो बड़े गुलाम अली साहब को भी बिठा के ले आते थे। तो एक दिन गुलाम अली साहब ने शिकायत की कि देखिए जी वो जो सजिंदे हैं उनको ये सुबह गाड़ी इकट्ठा करती है तो उसी में मुझे बिठा के ले आते। उनका मतलब था कि मेरे लिए अलग इंतज़ाम कीजिए, कुछ अलग गाड़ी आनी चाहिए, कुछ तो मेरी इज्जत और एहतमाम होना चाहिए। तो ये शिकायत सुन के बुखारी साहब ने कहा कि हाँ, वो म्यूजिशियन भी यही शिकायत कर रहे थे कि जी हमारे साथ आप उस्ताद जी को भी बिठा देते। तो इस तरह की लताइफ तो कई के बारे।
अच्छा ये बताइए आरिफ साहब, आप मैं आपके जाती जिंदगी पे आऊंगा और उसके बाद फिर सकलैन से पूछेंगे उनका सफर, कि आपने आपके इब्तदाई तजुर्बात क्या थे जब आपने रेडियो ज्वाइन किया और किस किस्म का माहौल था और कौन लोग थे।
देखिए 1970 में 1970 में मैं यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ तो उसके बाद जो पहली मुझे नौकरी मिली वो रेडियो की नौकरी थी सबसे पहले। तो 3 महीने तो मैं ड्यूटी रूम में काम करता रहा, उसके बाद मुझे प्रोडक्शन का काम मिल गया, मैं प्रोड्यूसर हो गया। अच्छा चूंकि मैं नया था तो उन्होंने ये सोच के कि नया लड़का है तो इसको कोई हैवी वेट प्रोग्राम नहीं देना, तो उन्होंने मुझे बच्चों का प्रोग्राम और औरतों का प्रोग्राम, ये दो प्रोग्राम मुझे दे दिए करने के लिए। उनका ठीक है, मशक्की बहुत अच्छी चीज़ है। तो बच्चों का प्रोग्राम मैं चूंकि सुनता आया था बचपन से, तो एक बड़ी रवायत थी इतवार के दिन वो प्रोग्राम होता था सुबह में, और बड़े अहतमाम से तमाम घरों में सुना जाता था, बच्चे रेडियो के गिर्द इकट्ठे हो जाते थे। और आपा शमीम और भाईजान ये दो किरदार थे बच्चों के प्रोग्राम में जो उसको कंडक्ट करते थे। तो अब कुछ बच्चों को शौक पैदा होता था कि वो खुद जाके हिस्सा भी लें, तो उस वक्त ये कोई सिक्योरिटी वगैरह का इस तरह का इंतजाम नहीं था, हम बच्चे जाते थे सीधे रेडियो स्टेशन में दाखिल होकर एंड स्टूडियो के अंदर तक हमें कोई पूछने वाला नहीं था, वहाँ जाके बैठ जाते थे। अच्छा कोई रिहर्सल नहीं, कोई पहले से तयशुदा चीज़ नहीं, वहीं पे लतीफे सुनाए जा रहे हैं उसी वक्त, उनको कुछ पता नहीं होता था ये कौन सा लतीफा क्या सुना देगा, लेकिन चलता था, सब चलता था रेडियो। तो वो ज़माना जो था मेरे बचपन का उसमें रेडियो सुना भी बहुत, और फिर जब थोड़ी सी होश आई मतलब मैं 11-12 साल का था तो मैंने रेडियो में जाना भी शुरू कर दिया, बच्चों के प्रोग्राम में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। तो इसलिए एक पसमंजर तो था, मुझे मालूम था माइक्रोफोन क्या है, इसे माइक्रोफोन से कितने फासले पे बैठना है, एको कहाँ आती है कहाँ नहीं आती, स्टूडियो में आवाज़ किस तरह कंट्रोल होती वगैरह। तो 1970 में जब मैं यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद रेडियो मैंने ज्वाइन किया बतौर प्रोड्यूसर के, तो जैसा कि मैंने बताया कि उन्हें औरतों और बच्चों के प्रोग्राम दे दिए, तो ये ज़माना नया नया पीपल्स पार्टी का ज़माना शुरू हुआ था और कौसर नियाज़ी साहब वज़ीर इत्तला'आत थे, तो वो वज़ीर बनने के फ़ौरन बाद अगले दिन ना दौरे पे आ गए रेडियो का दौरा करने के, क्या हो रहा है। अच्छा, उससे पहले वो आते थे 5 मिनट की मजहबी तकरीर करने शाम को, तो उसके उनको 15 रुपये का चेक मिलता था, और वो मिलता नहीं था दो दो तीन तीन महीने तक, तो चक्कर लगाते रहते थे। तो अब आके ना सबसे पहले वो ड्यूटी रूम में गए, कहने लगे वो चेक कहाँ हैं आज के। उनका जी वो आज के तो नहीं, अब क्यों नहीं बने हैं अभी तक, जो प्रोग्राम आज बंदा कर रहा है उसका चेक आज उसे मिलना चाहिए। तो वो चूंकि जख्म खाए हुए थे खुद, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि आज के बाद अगर मैंने ये देखा कि कोई टॉकर आया और बगैर चेक के घर चला गया तो मैं उल्टा टांग दूंगा सब। खैर वो लोग घबरा गए, फटाफट काम वामा शुरू हुए। इसके बाद उन्होंने दौरा शुरू किया सारे रेडियो का, एक एक कमरे में जाते पूछते, हाँ जी आप क्या प्रोग्राम करते हैं? मैं जी किसानों का प्रोग्राम करते हैं। क्या किसानों का प्रोग्राम करते हैं आप? ये प्रोग्राम है दुनिया कहाँ ज़रात तरक्की कर गई, अमरीका को देखो, बरतानिया को देखो, वो ज़रई मुल्क नहीं है फिर भी उनकी ज़रात कहाँ पहुँची हुई। आपको अभी तक, आपने अभी तक बीज नहीं बांटे किसानों में, आपको उनको ये तक नहीं बताया कि कौन सा बीज इस्तेमाल, तो ज़रात पर तकरीर कर रहे, वो बड़ी तैयारी से आए हुए। दूसरे प्रोग्राम ये स्टूडेंट्स का प्रोग्राम, क्या स्टूडेंट्स का प्रोग्राम आप करते हैं भाई? स्टूडेंट्स के मसाइल हैं, मसाइल को हल कीजिए, मसाइल को सामने लाइए। करते कराते वो हर एक पे तनकीद करते हुए मेरे कमरे में आ गए। हाँ भाई क्या प्रोग्राम करते हो? कहा जी मैं औरतों का प्रोग्राम करता हूँ और बच्चों का। ये औरतों का प्रोग्राम जो आप करते हैं ये मैं देखता हूँ, वो बाहर कारों में से उतरती हैं लेडीज साड़ियों वाली और स्कर्टों वाली, भाई ये हमारी खवातीन नहीं है। हमारी खवातीन वो हैं जो गोबर उठा रही, हमारी खवातीन वो हैं जो बर्तन मांझ रही, इन लोगों को लाइए, इनके प्रोग्राम कीजिए। बोली उन्होंने तकरीर की, और क्या करते हैं? मैंने कहा बच्चों का प्रोग्राम। बच्चों का प्रोग्राम? कौन से बच्चे? वो जो नीली निकर और सफेद कमीज के यूनिफॉर्म में और एक महंगा बस्ता लटकाया हुआ, उनको आप ले आते हैं यहाँ पे, वो कारों से उतर के स्टूडियो में आते हैं और इंग्लिश बोल के यहाँ चले जाते। हमारे बच्चे ये नहीं है, हमारे बच्चे वो हैं कि अगर ऊपर उनके शर्ट है तो नीचे पजामा नहीं, अगर पजामा पहना हुआ है तो ऊपर शर्ट नहीं, वो बच्चे। तो बीच में एक बड़ा जला बुना प्रोड्यूसर खड़ा था, कहता जी फिर अपने बच्चे ले आया करिए। तो वो मौलाना ने फिर सारा दौरा किया।
अच्छा,
और बड़ी इसलाहत नाफिज की। और
लेकिन आप फिर क्वेटा भी चले गए ना उस दौरान?
जी फिर ऐसा हुआ कि मुझे क्वेटा भेज, पहले बल्कि जब मैं आया, जब मैंने ज्वाइन किया था ना
जी,
तो मुझे 3 महीने के बाद क्वेटा भेज दिया गया था।
अच्छा,
मैं क्वेटा रहा और क्वेटे के बाद फिर मुझे वापस लाहौर आने का मौका मिला और फिर ये तमाम वाकयात हुए।
सखलैन साहब जरा आप भी अपना कुछ सफर तो सुनाएं और रेडियो से जो वाबस्तगी क्यों कर पैदा हुई, चूंकि आप तो यानी एक लिखारी भी रहे हैं, यानी एक रिपोर्टर के हैसियत से आपने काम किया अखबारात में और फिर रेडियो की तरफ आए, तो जरा ये सफर जरा सुनाइए
हमारे लिए। तो सुनने वालों को एक तो आपका शुक्रिया, आपने इतनी इज्जत दी मुझे कि आपने दावत दी। दूसरी ये कि जो आपका सवाल है, पहले मैं उसी की तरफ आता हूँ। मैं प्रिंट जर्नलिज्म से आया था, तो इस वजह से लिखने का काम था, रिपोर्टिंग लिखना ज़्यादातर, सियासी इकतसादी मालियाती मसाइल इन पर ज़्यादातर लिखा, और साथ साथ दूसरी कुछ सकाफ़ती चीज़ें अदबी चीज़ों पर कभी कभार लिख लेता था, लेकिन उस पर मेरा कोई अबूर नहीं है, लिख लेता था, फहम थोड़ी सी थी तो ट्राई कर लेता था। तो जब मुझे BBC में बुलाया गया यहाँ पे, तो उस वक्त BBC खुद एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज पे था। BBC एक रिवायती ब्रॉडकास्टिंग से करंट जर्नलिज्म, यानी पाकिस्तान की डायरेक्ट जर्नलिज्म कवरेज या इवेंट्स की कवरेज है, उसकी तरफ बढ़ रहा था। तो हमारे सामने जो बेसिक चैलेंज था वो ये था, यानी मेरा जाती तो चैलेंज ये था कि मुझे प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की तरफ आना था, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था क्योंकि मेरी एक अपनी ट्रेनिंग थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, ये जानरे क्या है, इसकी लैंग्वेज क्या है, क्योंकि मैं इससे पहले इत्तेफाक से कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मैंने ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म ही पढ़ा हुआ था। सो मुझे एक अंदाज़ा था कि फ्रेम क्या होगा। लेकिन BBC की अपनी एक पॉलिसी भी है रही है, और हमारे जहनों में जो रेडियो का तस्वर था वो रेडियो पाकिस्तान का था या ऑल इंडिया रेडियो का था। अच्छा, आरिफ साहब ने बड़ी अच्छी तारीख बताई, लेकिन इस तारीख में बड़ी बुनियादी चीज़ है जिसकी निशानदेही मैं बहुत जरूरी करना ज़रूरी समझता हूँ, कि हमारे सामने जो पाकिस्तान या इंडिया के जो रेडियो के जो मॉडल्स चले आ रहे हैं
जी,
आज से मतलब 20 साल पहले तक तो यही हालत थी, या 30 साल पहले तक, ये सारे के सारे स्टेट कंट्रोल मीडिया थे, ठीक है, और स्टेट कंट्रोल मीडिया होने की वजह से इनमें वो आज़ादी नहीं थी सहाफत की जो कि प्रिंट जर्नलिज्म में थी। तो प्रिंट जर्नलिज्म में जो लिखने की आज़ादी, रिपोर्टिंग की आज़ादी, जाहिर है एक महदूद हद तक, लेकिन एक रेडियो और टेलीविजन जो कि दोनों के दोनों सरकारी थे, पाकिस्तान का पीटीवी, इंडिया का दूरदर्शन, यही सारे चैनल्स थे और ये सारे स्टेट कंट्रोल थे। तो इसके नतीजे में वहाँ पे जो भी बातें होती थी वो हम ये पहले से तस्वर कर लेते थे कि एक किस्म का गजट नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट्स का, वो इंडियन गवर्नमेंट का है और ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का है, ये जर्नलिज्म नहीं है। तो हमारे जहन में कुल तस्वर यही था कि ये जर्नलिज्म नहीं है। तो जब हम यहाँ पे बीबीसी में आए तो हमने जो यहाँ पे सीनियर लोग देखे जो हमसे पहले थे, इनमें कुछ लोग बड़े ऐसे भी थे जो इंडिपेंडेंट क्या कहते हैं रस्तों से आए थे और इंडिपेंडेंट तालीम भी रखते थे, मसलन वकार अहमद साहब थे या अली अहमद खान थे या आसिफ जिलानी साहब थे, ये वो लोग थे जो जिनका रेडियो या टेलीविजन से कोई ताल्लुक नहीं था, यानी जो अपने प्रिंट जर्नलिज्म से एक आज़ाद सोच के साथ यहाँ पे आए थे। लेकिन बाकी जो क्राउड था यहाँ पे वो या रेडियो पाकिस्तान का आया हुआ था या इंडिया के ऑल इंडिया रेडियो या इस तरह के चैनल से आया हुआ था। तो हमें सबसे पहले चैलेंज ये था कि हमने जो जर्नलिज्म शुरू की वो एक तो ये शिफ्ट होना था फ्रॉम प्रिंट टू इलेक्ट्रॉनिक, और दूसरा ये था कि जो टोटली एक नई अप्रोच के साथ जो जर्नलिज्म करना था वो काफ़ी एक बड़ा चैलेंज था और हमारे सामने उस वक्त। लेकिन ज़्यादा तकलीफ या मुसीबत नहीं हुई हमें, सिवाय इसके कि हर जगह पे एक एक चीज़ पे नेगोशिएट करना, ये करना, यहाँ तक कि अगर मैंने किसी साहब से बहुत ही आजिज़ाना अंदाज में दरख्वास्त की कि ये मतलब बीबीसी के डिस्पैचेस आए हुए फर्स्ट के ज़माने में, कोई ईरान का एक बाम का एक जलजले का वाक़ा हुआ था, तो मैंने उस पर ख़ासतौर पर कहा कि ये बाम में ये जो वाक़ा हुआ इसकी तफसीलात इस डिस्पैच में हैं, लेकिन इसका मैं इंट्रो ये यूज़ करूँगा दूसरे डिस्पैच का ताकि लिंक हो जाए। तो आप इसका तर्जुमा करते वक्त ये ख्याल रखिए कि ये इस इंट्रो के साथ एक लिंक बन जाए उसमें। तो उस बात को बयान करने की बड़ी अच्छे महजब तरीके से कोशिश की, लेकिन जो रिस्पांस मुझे मिला वो ये था कि तू मैनू सहाफत सिखाएंगा, मैं तेरी लत्ता तोड़वा दूंगा। तो इस किस्म की बातें हमें बीबीसी में फेस करनी पड़ी। तो खैर अल्लाह का शुक्र है मेरी लातें महफूज रही, लेकिन ये कि ये काफ़ी एक बड़ी चेंज थी बीबीसी में जो आ रही थी, जो एक मज़ाहमत भी थी, लेकिन ये बहुत बड़ी चेंज आनी ही थी। एक चीज़ तो ये, अच्छा ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं आई है, आज तक नहीं आई है। पाकिस्तान का जो रेडियो है, ख़ासतौर पर जो सरकारी रेडियो है, और पाकिस्तान का जो टेलीविज़न है, ख़ासतौर पर जो सरकारी टेलीविज़न है, वो आज भी वो यानी आप यूँ कह लें कि स्टेट की पॉलिसी बयान कर रहा है, और जो प्राइवेट सेक्टर में जो टेलीविज़न चैनल्स आए हैं वो बिल्कुल उसके बरक्स एक ऐसी सूरत में आ गए हैं कि जिनको अपनी जो यानी प्रोफेशनल गाइडलाइंस में रहना चाहिए था वो उसमें भी नहीं रहे। तो ये भी एक समझे कि जो रियासत का जो जबर होता है उसके खिलाफ जब एक आपको आज़ादी मिलती है या उससे आज़ादी मिलती है तो आप पर अपनी जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि बहरहाल गुफ्तगू का एक मेयार तो रखना है आपको, लेकिन जब आप रियासत की आज़ादी के बाद जो आपको या रियासत से बाहर निकलने के बाद जो आपको आज़ादी मिली है उसमें जब आपने मेयार बरकरार नहीं रखे अपने गुफ्तगू के, तो आप ज़्यादा ख़तरनाक हो गए हैं और आपकी जो बज़ाहिर आज़ादी है वो सबके लिए नुकसानदेह और आपके अपने लिए भी नुकसानदेह है। तो अल्टीमेटली यही चीज़ होती है आपकी आज़ादी को, यानी गैर जिम्मेदाराना आज़ादी जो होती है ये आपकी आज़ादी को खुद कत्ल कर देती है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के मीडिया में इस वक्त हो रही हैं।
सर मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, ये पाकिस्तानी मीडिया और जो करंट इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आरिफ साहब के पास जाऊंगा और मैं इनसे ये आरिफ साहब आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप जरा अयूब खान का दौर और भुट्टो के दौर का तो आपने तस्करा किया, लेकिन जब मार्शल लॉ लगाया 1958 में उसके बाद रेडियो पाकिस्तान में कुछ बड़ी तब्दीलियां आती हुई आपने देखी।
देखिए अभी ये बात हो रही थी कि सरकारी कंट्रोल में चलने वाला रेडियो जो है उसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं, और जब वो आज़ाद हो जाए सरकारी कंट्रोल से, यानी जैसे बाद में कमर्शियल रेडियो शुरू हो गए हमारे यहाँ, वो आज़ादी हमें क्या क्या रंग दिखाती है। बात यह है कि जब सरकारी कंट्रोल में चलता था रेडियो पाकिस्तान تو یہ درست ہے کہ اس میں سرکاری نقطۂ نظر ہی بیان کیا جاتا تھا، یعنی جو اس کی جرنلزم کی سائڈ ہے اس میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو نان جرنلسٹک پروگرام تھے مثلا وہ اتنی ورائٹی تھی ان میں کہ آج کا کمرشل ریڈیو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، مطلب آج کا کمرشل ریڈیو کہاں بچوں کا پروگرام کرے گا، وہ کہاں خواتین کے لیے الگ پروگرام کرے گا، وہ کہاں اسٹوڈنٹس کے لیے پروگرام لائے گا، وہ تو گانے لگائے گا اور جس چیز پہ اشتہار مل رہے ہیں وہ چلائے گا۔ تو کمرشلزم آنے سے پہلے یہ تھا کہ معاشرے کے ہر طبقے کو کیٹر کرتا تھا ریڈیو، کیونکہ ریڈیو ہی واحد اس وقت ذریعہ تھا کمیونیکیشن کا عوام سے، اس لیے جو پالیسی بنتی تھی ریڈیو پروگرامنگ کی اس میں دیکھا جاتا تھا کہ معاشرے کا ہر طبقہ جو ہے اس کی نمائندگی ہو۔ لہذا اس زمانے کے بہت بہت اچھے پروگرام جو ابھی آرکائز میں موجود ہیں، آپ کبھی سنیں تو دیکھیے بچوں کے لیے کیا کچھ، اور پھر بچوں کا یہ نہیں کہ ان کو کہانی سنا کے ٹال دیا، اس میں مطلب اس میں ایک سلسلہ تھا کہ جب میں تمہارے جتنا تھا، اس میں بڑے بڑے مشاہیر آ کے بچوں کو بتاتے تھے کہ جب میں آپ جتنا تھا تو میں کیا کیسی شرارتیں کرتا تھا، کیسے پڑھتا تھا، کیا ماحول تھا، کیا مشکلات تھیں، اور آج آپ کو کیا کیا سہولتیں ملی ہوئی۔ تو بچے ایک موازنہ کرتے تھے اپنا اور ان کے زمانے۔ اس سلسلے میں ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ جب یہ پروگرام میرے پاس آیا تو میں نے ادیبوں شاعروں کو اس میں، پہلے مشاہیر سیاست وغیرہ کے آتے تھے، تو میں نے کہا ادیبوں شاعروں کو لانا، تو سب سے پہلے منیر نیازی کو لے آیا۔ اب میں ان کو لینے گیا گھر، تو رستے میں وہ ریڈیو کی وین میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ منیر صاحب پھر آج کیا گفتگو کریں گے، وہ اتھے ہی سپونٹینیس ہی مزہ آتا ہے، بس اتھے ہی کریں گے گل۔ اچھا انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ کیا کریں۔ اس کے بعد جب آئے مائکروفون پہ تو وہ کہنے لگے کہ میں اپنے بچپن کا واقعہ سنانے لگے، اب بچے سن رہے غور سے، کہنے لگے کہ میں صبح صبح نماز پڑھنے مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہے اور اس کی ٹانگیں مسجد کی دوسری دیوار تک پھیلی ہوئی ہیں۔ میں تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ اچھا اب وہ بچے ماڈرن زمانے کے بچے، وہ ہنس رہے ہوں گے، اچھا اچھا وہ کوئی پیچھے دیے کا سایہ ہوگا یا کوئی لائٹ ہوگی تو اس کی ٹانگوں کا سایہ آگے پڑ رہا ہوگا، تو بچے ہم سے پوچھتے وہ جی کوئی روشنی کا سایہ وغیرہ، نہیں نہیں وہ آدمی اتنی لمبی ٹانگوں والا وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ بچے پھر ہنس پڑے، نہیں 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 پھر آخر میں پتا کیا چلا، پتا کیا چلا وہ گرمی کا پتا کیا چلنا تھا، وہ ایک عجیب الخلقت چیز تھی، وہ کوئی جن بھوت تھا جو وہاں مسجد میں بیٹھا تھا اور میں اس کو دیکھ کے کانپنے لگ گیا، مجھے بخار چڑھ گیا۔ اچھا وہ بچے تھے منن بچے مان نہیں رہے اور وہ منیر نیازی صاحب انسسٹ کیے جا رہے ہیں۔ خیر وہ بڑی مشکل سے اس کو وائنڈ اپ کیا، وہ ستنام محمود تھیں کمپیوٹر، تو انہوں نے آ کے کہا کہ وہ دیکھو شاعروں کا تخیل ہوتا ہے اپنا اور وہ اپنی امیجنیشن سے باتیں، انہوں نے تھوڑا کور اپ اس کو کر لیا۔ لیکن وہ میری پیشی ہوگی کہ یار تم ایسا آدمی کیوں لے کے آئے جسے بچوں کو پریشان کرتی۔
اچھا یہ بتائیں سقلین کہ آپ کو میں نے اس وقت، اب ذرا بعد میں، یعنی یہ تو ریڈیو پاکستان کا دور شروع میں ہے، اس کے بعد ہم ذرا بعد میں آتے ہیں کہ کچھ پرائیویٹ ریڈیو شروع ہوئے۔ اچھا دلچسپ بات یہ کہ ہمارے ہاں ایف ایم ریڈیوز کو بھی اب بہت عرصہ ہو گیا ہے، ایف ایم سے پہلے ہمارے ہاں کوئی پرائیویٹ اس طرح سے، یعنی کوئی جو دیگر یعنی میڈیم ویو شارٹ ویو ٹائپ کا کوئی ریڈیو نہیں آیا، یعنی کوئی ملگیر نشریات کسی پرائیویٹ اسٹیشن سے پاکستان میں ہم نے نہیں سنی۔
نہیں مقامی طور پہ بھی کوئی نہیں تھی، مقامی طور پہ ایف ایم کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے تو ریڈیو پاکستان کی مونوپولی تھی فل، اور کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کسی اور کی، بلکہ وہ بہت بڑی بغاوت سمجھی جاتی تھی کہ اگر،
ہاں کیونکہ ظاہر ہے کہ اسٹیٹ کا آرگن تھا۔ تو اب آپ نے اس زمانے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ میں نے تو، میں تھوڑا سا اگر اختلاف کی جسارت کروں عارف صاحب سے، تو ایسا نہیں ہے کہ بچوں اور خواتین کے، بے شک پروگرام خواتین کے لیے تو ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان میں صرف یعنی 24 گھنٹے موسیقی یا اشتہار ہی نشر ہوتے رہے ہوں، بعض ایف ایم ریڈیو چینل سے بڑے اچھے دلچسپ پروگرام بھی سننے کو ملتے ہیں۔
دیکھیے ہم اصل میں اصل موضوع سے ذرا سا ہٹ رہے ہیں، لیکن کیونکہ آپ نے سوال کیا اس لیے میں اس پر آ رہا ہوں۔ वो ये कि जो कंटेंट है प्राइवेट रेडियोज़ के वो ज़्यादा कमर्शियली ड्रिवन है कि रेवेन्यू कितना मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। अगर बच्चों के प्रोग्राम्स उनको रेवेन्यू मिल सकता तो ज़रूर बढ़ते। अगर सिर्फ औरतों के प्रोग्राम से, हालांकि अगर कोई क्रिएटिव, बल्कि अभी जब हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ती मैं ये बताऊँगा कि रेडियो की जो सफ़र है और जो आगे चैलेंजेस हैं इसमें असल चीज़ ही क्रिएटिविटी है जो उसको बचाएगी या बचा सकती है, वरना रेडियो इज़ डूम्ड, ये इसका वक्त आ गया हुआ है। और उसकी वजह यह है कि मैं उधर बाद में आता हूँ, लेकिन ये कि जो आपका जो सवाल इस पर आता हूँ कि जो रेडियो पाकिस्तान था या पाकिस्तान टेलीविज़न था, ये पब्लिक सेक्टर इदारे थे, इनकी फंडिंग जो थी हुकूमत की तरफ से गारंटीड थी, कम से कम भी और ज़्यादा से ज़्यादा भी, और ये ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल चलाकर भी हासिल करते थे, जो एक एडिशनल इनको एडवांटेज था। मतलब बरतानिया में बीबीसी को अभी तक बरतानिया के अंदर इश्तहारा चला के इनकम की इजाज़त हासिल करने की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान में ये पीटीवी को इन्हें एक लाइसेंस फी भी मिल रही है और फिर साथ साथ उनको कमर्शियल चला के जो इनकम हो रही वो भी।
पाकिस्तान में तो हर बिजली के बिल में आप पैसे देते हैं,
पैसे दे, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ के टेलीविजन को तो बीबीसी से भी ज्यादा बेहतर क्वालिटी के प्रोग्राम पेश करने चाहिए, क्योंकि उनकी इनकम दो जराए से गारंटीड है, इन्हें एक लाइसेंस फी मिल रही है उनको,
और एक प्राइवेट सेक्टर
और एक वो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग से भी ले रहे हैं, तो लिहाजा उनके पास दौलत काफी होनी चाहिए, और जितनी ज्यादा इनकम है रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसी लिहाज से उनका कॉन्टेंट भी उतना रिच होना चाहिए। तो अब ये एक अलग बहस है कि वो उसके तनासुब के लिहाज से जितना इनकम हुई उन्होंने कितना आगे खर्च किया कंटेंट जनरेट करने पे, या कितनी करप्शन हुई, ये भी एक स्टेट इंस्टीट्यूशन के बड़े मसाइल होते हैं। तो लेकिन ये कि वहाँ पे ये सहूलतें जो थी ये प्राइवेट सेक्टर इदारों को नहीं थी, जिन्होंने बाद में यानी जनरल मुशर्रफ के बाद या उनके ज़माने में जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जो एक लिबरल पॉलिसीज अपनाई गई जिसके नतीजे में पैमरा बना, जिसके नतीजे में एफएम के रेडियो स्टेशंस कायम हुए, उनको लाइसेंसेस मिले और प्राइवेट सेक्टर में टेलीविजन चैनल्स शुरू हुए। तो ये सारा का सारा जो काम था ये सारे प्राइवेट सेक्टर में जब गए तो कमर्शियल इनका बेसिकली चलाकर या एड्स चलाकर ही इनकी इनकम बनती थी। तो इनके चैलेंजेस भी ये था कि इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है। तो इत्तेफाक से पाकिस्तान में सियासी मौजूद बड़े अहम रहे हैं, तो पता चला कि ये ड्रामों के बाद जो सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेशन करने वाला जो शो है वो टॉक शोज है, यानी जिस पे आप लड़ाई करा रहे हों, बोतल चलवा रहे हों या ग्लास एक दूसरे पे फेंकवा रहे हैं और लड़कियों पर कोई या खातून सियासतदानों पर आवाज़ें कसे जा रहे हैं, तो वो प्रोग्राम बड़ा हिट होता रहा है यहाँ पर। तो अब लिहाजा ये डाई हैज़ बिन कास्ट, तो अब आपके यहाँ टीवी कामयाब टीवी के लिए ड्रामों के बाद ये, और ख़ासतौर पर जो पॉलिटिकल जर्नलिज्म में जो कामयाब चीज़ है आपके यहाँ वो ऐसे हैं जंतर मंतर वाले टॉक शोज जिसमें मुमकिन है आप तोते से फाल भी निकलवा के सवालात करा सकते हैं, ये इस तरह की भी बातें होंगी। और क्योंकि सब चीज़ें आपने बेसिकली किसी ना किसी तरह आपने अपने व्यूअर्स को नाजरीन को चिपका के रखना है अपनी स्क्रीन के साथ और
क्योंकि और चौंकाना है
और चौंकाना है। तो ये सब चीज़ें इनके नतीजे में इनकी इन कमर्शियल रेवेन्यू मेजर सोर्स ऑफ इनकम की वजह से और कोई स्टेट फंडिंग ना होने की वजह से इनका बेसिक जो एक सबब जो है यानी पब्लिक इंटरेस्ट में प्रोग्राम्स ना बनाने का वो यही है।
और रेडियो पे भी ऐसा ही है,
रेडियो पे भी यही हालत है, क्योंकि आप अगर आप एक एफएम रेडियो बनाते हैं, हालांकि अब ये सस्ता है, बहुत बड़ी महंगी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो लेकिन एक इनकम तो चाहिए। अच्छा, फिर कंटेंट जनरेट करने के लिए भी पैसे चाहिए। इस वक्त आज के दौर में दुनिया में टेलीविजन स्टेशन कायम करना यानी टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जो असल अब चैलेंज जो है वो ये कि आप कंटेंट कैसा जनरेट कर रहे हैं, आप कितने क्रिएटिव हैं।
लेकिन ये आप बताइए, आपने ये पहले भी फरमाया और कि क्रिएटिविटी यानी आप में तख्लीकी सर्वतमंदी कितनी है, उसकी बुनियाद पर कितने ज्यादा तख्लीकी जहन रखते हैं आप और उससे कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो आपने कहा कि ये वाहिद जरिया है जिसके जरिए जिससे रेडियो के बचने की उम्मीद है, वरना रेडियो का जमाना खत्म हो रहा है। इसे जरा मजीद तफसील से समझाइए।
अच्छा, आपने तफसील क्या है, मुझे इजाजत दे दी कि मैं अपनी
ताकि हमारे सामीन को भी समझने में, लेकिन और मुझे खुद भी समझने में आसानी
हो, कि बड़ी मुख्तसर अंदाज से बात बयान कर सकूं। रेडियो देखिए रेडियो पिछली सदी के शुरू में और यानी मगरिब से शुरू हुआ, अमेरिका से फिर यूरोप में भी इस तरह फैला है, तो बुनियादी तौर पे जो रेडियो ने एक जो एवोल्यूशन जो लिया था ये क्रीड के बाद का लिया था। इससे पहले जो न्यूज़ का जो फैलाव जो था, यानी मैं टेक्नोलॉजी के दौर की बात कर रहा हूँ, यानी जब ये क्रीड आना शुरू हुई, यानी पहले प्रिंटर के जरिए जब मैसेजेस आना शुरू हुए, उससे बड़ी फास्ट एंड रैपिड किस्म की न्यूज़ ट्रांसमिशन होती थी। उसके नतीजे में न्यूज़ राइटिंग का एक स्टाइल बना है,
ठीक।
और अगर आप देखें गौर से, आपके जो न्यूज़ राइटिंग का जो स्टाइल है वो क्रीड के ज़माने का अभी तक चल रहा है और शायद आइंदा भी चले, ये मुझे लग रहा है कि आइंदा भी चले। उसकी वजह ये है कि क्रीड में ये आया कि आपको यानी हमें जो यानी जो रिवायती तौर पर जो जर्नलिज्म हमने सीखा, ये किताबें पढ़ी, मैं बाकायदा जर्नलिज्म स्कूल में नहीं गया हूँ यानी पाकिस्तान के किसी, लेकिन फिर मैंने सीखा और किताबें पढ़ी उसके बदौलत और उस असाज़ा जो भी थे उनसे पढ़ा भी बैठ के, मेहदी हसन साहब जैसे लोगों के साथ और जो कि जर्नलिज्म के आदमी थे इसलिए मैंने बात की है, और लेकिन ये कि जिन्होंने जर्नलिज्म किया है चाहे जर्नलिज्म स्कूल से गए नहीं गए, बस जहीर बाबर साहब हो गए, हुसैन नकवी साहब हो गए, आई रहमान साहब हो गए, इन सबसे हमने फैज़ हासिल किया है और बड़ा यानी हमने उनसे सीखा है, स्किल्स भी सीखी हैं, लैंग्वेज के भी ख्याल रखने। लेकिन एक बुनियादी चीज़ होती ना खबर बनाने में, खबर निगारी जिसको कहेंगे, वो होते थे छोटे छोटे पैरे, ठीक है, यानी इंट्रो आपका 32-33 या 36 वर्ड्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, बाकी सारे पैरे 24-28 वर्ड्स के होने चाहिए, चलने चाहिए आपके। ये एक स्टाइल रहा है
न्यूज़ लिखने का,
न्यूज़ लिखने, और उसकी वजह क्या थी, क्रीड थी, क्योंकि क्रीड पे आपको एक एक न्यूज़ का एक एलिमेंट जो एक छोटे पैरे में बना के चला देना है, और उसका एक फॉर्मेट ये बनाया गया था इन्वर्टेड पैरामिड, कि जो सबसे ज्यादा अहम खबर का हिस्सा है वो पहले पैरे में या शुरू के पैरों में आ जाए,
शह सुर्खी,
हाँ, यानी उससे यानी सबसे अहम खबर के एलिमेंट से लेकर जो उससे कम एलिमेंट है खबर का हिस्सा जो है पहलू है वो उसके दूसरे पैरे में फिर तीसरे पैरे में, इस तरह उससे एक तो क्रीड होने में आपको बड़ी सहूलत होती थी कि आपको खबर पहुंच गई जहां भी जानी है, और फिर उसके बाद जो कुछ नीचे आता गया वो कम होता गया, ताकि अगर जहां पे क्रीड ना भी पहुंच पाए या पहुंच गई है और उसको खबर काटनी है तो काट के फारिग कर देगा बाकी क्रीड को और खबर इस्तेमाल कर लेगा। तो ये वो पैटर्न है जो चला है और यही प्रिंट करा, यही फिर रेडियो में चला है, यही फिर टेलीविजन में चला है, और अब नजर ये आ रहा है कि अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे देखे जाके, मतलब जो ट्विटर है, ये समझे इसने तकरीबन वही चीज दोबारा जिंदा कर दी हुई है। तो लिहाजा ये होप्स है बहुत सारी, पैटर्न वही है, अल्फाज का चुनाव है, फिर एक जो क्रीड में हमें एक और भी चीज बताई थी कि सबसे सादा तरीन अल्फाज इस्तेमाल करें, एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कम से कम करें, ठीक है, ये तमाम चीजें अब भी रेलेवेंट नजर आ रही हैं खासतौर पे सोशल मीडिया पे। तो लेकिन सोशल मीडिया पे कई प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन अगर इंस्टाग्राम पे देखें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, या स्नैपचैट पे देखें, या ट्विटर पे देखें, या इवन फेसबुक पे भी देखें लोग, ठीक है फेसबुक पे लंबे लंबे चीजें भी लिख सकते हैं, लेकिन जो
आमतौर पर
लोग छोटे छोटे कॉमेंट्स लिख रहे हैं। तो अब ये सब चीजें जो है, ये जब मैं रेडियो के पर खासतौर पर जब आऊंगा, फोकस करूंगा और रेडियो की हद में जब रहूंगा, तो रेडियो में भी यही चीज चली। अच्छा, लेकिन रेडियो में फर्क क्या आया है कि हमने जिस रेडियो को अपने, मैंने बहुत बचपन में जो देखा है वो कोई समझे संदूक के बराबर या एक अलमारी के बराबर का एक समझे सिस्टम चल रहा होता था जिसको हम रेडियो कहते थे, और उसके अंदर ट्यूब्स जो होती थी इतनी बड़ी बड़ी होती थी, यानी 4-4 इंच की 6-6 इंच की ट्यूब्स, और कई ट्यूब्स उसके अंदर रोशन होती थी, और जब बिजली से ऑन करते थे तो सारी ट्यूब्स को गर्म होने में 1 मिनट से, अच्छा रेडियो तो 1 मिनट वरना 2-3 मिनट लगेंगे, उसके बाद रेडियो को आप ट्यून इन बाकायदा करके सुन सकेंगे, ये सिस्टम था। उसको रिप्लेस किया ट्रांसिस्टर ने, ट्रांसिस्टर में सारी ट्यूब्स का जो पूरा सिस्टम था वो चिप्स की सूरत में आ गया। अच्छा, उसको रिप्लेस किया है माइक्रोचिप्स ने, ट्रांसिस्टर के कभी अगर आप चिप बोर्ड देखे उसमें ट्रांसिस्टर लगे होते थे छोटे छोटे, और एक वो क्या कह लें गत्ते का बोर्ड सा लगा होता जिसमें सारे ट्रांसिस्टर काविये के टांकों से जोड़े हुए होते थे, लेकिन वो मशीन से जोड़े होते थे। अब वो सारा का सारा सिस्टम जो एक माइक्रोचिप पे आ गया हुआ है, ठीक है, जो नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से और भी छोटा हो गया, आपके एक छोटे से हैंडफोन में हजारों एप्स मौजूद हैं और हजारों सहूलतें मौजूद हैं एक मोबाइल फोन में। तो हम वो रेडियो के उस टेक्नोलॉजी से आगे आ गए। अब आप देखिए वो जो था ना रेडियो जो हमारे नानी के जमाने में था, जिसको ट्यून इन करने के ना सिर्फ ट्यूब्स के गर्म होने के इंतजार करते, बल्कि कोई भी रेडियो सुनने के लिए वो एक तांबे की एक पट्टी लगाई जाती थी घरों के सहनों में,
एंटेना से पुराने,
एंटेना से भी पुराने किस्म का, यानी ये एक वो सिल्वर की तक लाइन नहीं आती थी जो खेच के ऊपर बड़ा करते, बल्कि वो एक पूरा एक पट्टी टांगी जाती थी, और उसके बाद फिर आप चाहे तो बीबीसी भी सुन सकते थे, यानी बाहर का मुल्क का। तो ये सारा सिलसिला वो टेक्नोलॉजी के साथ था। अब ये टेक्नोलॉजी खत्म हो चुकी, उसके बाद ट्रांसिस्टर आ गया, ट्रांसिस्टर भी खत्म हो गया है। अब मुझे तो नहीं नजर आता ट्रांसिस्टर शायद देहातों में होगा, लेकिन ये कि अब माइक्रोचिप्स की वजह से मोबाइल फोन्स में सब कुछ ट्रांसफर हो गया, या अगर रेडियो भी है तो वे छोटे छोटे स्मार्ट
रेडियो के एप्स हैं। मतलब मैं अगर पाकिस्तान में रहते हुए अगर मैं रेडियो 4 सुनना चाहूं तो मैं अपने फोन पर।
अच्छा, अब मैं जब ये अर्ज करूं यहां पे कि जिस तरह, यानी अब आप जहन में रख लीजिए आप कि जिस तरह क्रीड की वजह से आपका न्यूज फॉर्मेट बदला,
ठीक,
बड़ी बुनियादी चीज बता दूं कि दैट फॉर्मेट ऑफ न्यूज क्रीड वॉज डिक्टेटेड बाय द टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि उस टेक्नोलॉजी में यही क्रीड चल सकेगी,
ठीक,
और वो फिर 100 साल से ज्यादा अरसा हो गया वो चल रही है अभी तक, अभी भी न्यूज क्रीड ट्विटर या जिस तरह भी आ रही है वो उसी में आ रही है। अब रॉयटर्स, अब हालांकि रॉयटर्स बहुत एडवांस या AFP की खबरें पढ़े उनके वेबसाइट्स पे जाके, तो अब बाकायदा क्रीड यानी स्टोरी बना रहे हैं, और वो इसकी वजह कि ये डिजिटल हो जाने की वजह से। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अब का जो रेडियो है वो ना ट्रांसिस्टर है ना वो पुराने नानी के जमाने का, हमारे या ग्रैंड पेरेंट्स के जमाने का है। अब रेडियो टॉक है, अब रेडियो में कॉन्टेंट जो है, जो आप रिवायती कॉन्टेंट प्रोड्यूस करते रहे हैं, उसको आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिहाज से इनोवेटिव अंदाज से पेश करना होगा। यानी यहां पे वो क्रिएटिविटी आती है कि आपकी ये नई जनरेशन, इस वक्त की जो नई जनरेशन जो है वो म्यूजिक सुनने के लिए रेडियो पर नहीं जा रही है, ठीक है, वो म्यूजिक सुनने के लिए स्पॉटिफाई पे जा रही है, या साउंड क्लाउड्स पे जा रही है, या एप्पल पे जा रही है, ये सर के, और ये तो मैं चंद मशहूर नाम ले रहा हूं, इसमें सैकड़ों हैं,
बिल्कुल
ठीक है, सैकड़ों मैं बता रहा हूं जो मैं जानता हूं, शायद ये हजारों हों क्योंकि मेरे पास पूरा डाटा नहीं है इस बारे में, कहां कहां बन रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, फिर बार बार नए आ रहे हैं। हमारे सामने की बात है माई फेस एक आया था, वो खत्म भी होगी टेक्नोलॉजी, और फिर स्नैपचैट की दूसरी फॉर्म आ चुकी हुई है, पहले सिर्फ, तो मेरा मतलब कि ये सब चीजें जो है ये बता रही हैं कि आपको वो टॉक जिसकी इब्तदा रेडियो में शुरू हुई थी, क्योंकि आप एक गुफ्तगु जो पहले सिर्फ टाली थल्ले बैठ के या मस्जिद में या चौराहों में या कहवा खानों में या लोगों के पार्टी हाउस में करते थे, वो आप रेडियो पे सुनते रहे हैं या करते रहे हैं, अब उस टॉक को आप इस डिजिटल फॉर्म में जेनरेशन जी के लिए, यानी वो लोग जो इनको हम आज के दौर का नौजवान कहेंगे, उनको किस तरह इंगेज करेंगे, वो सुनना चाह रहे हैं। डेटा ये बता रहा है कि आज का नौजवान जो है वो आपकी हातमदाई की भी कहानियां पढ़ना चाह रहा है, उम्र अय्यार और हमजा की, अमीर हमजा की भी कहानियां पढ़ना चाह रहा है, ये नजर आ रहा है हमें। आप कोई भी पुरानी पाकिस्तान बनने के मसाइल या उस वक्त की हिस्टोरीज जो हमें सरकारी जराए से नहीं मिलती हैं, अगर आप उसको पेश करेंगे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, लोग सुनना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये औरतों के हकूक की बात करेंगे, लोग सुनना चाह रहे हैं। तालीम इतना बड़ा चैलेंज है इस वक्त दुनिया में, जो बहुत बड़ी यानी टेक्नोलॉजी की वजह से जो इंडस्ट्री खड़ी हो रही है, उसके लिए हम कितना तैयार है, हमारा रेडियो या हमारे पाकिस्तान के लोग कितने तैयार हैं, होना चाहिए, लेकिन हम ये आप खुद बता सकते हैं कितने तैयार है। वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो खड़ी हो रही दुनिया में वो है एड टेक, जिस तरह
एजुकेशन टेक्नोलॉजी
जिसे
सकलैन, ये बहुत ही अहम नुकात आपने उठाए। मैं आखिरी सवाल आरिफ वकार साहब, और इस पे आपके पास मैं दोबारा आता हूं एक फाइनल कॉमेंट के लिए। आरिफ साहब, ये एक मैं थोड़ा सा माजी में जाना चाहूंगा, क्योंकि सकलैन हमें मुस्तकबिल में ले गए, लेकिन हमारा पैटर्न यही है कि हम 75 बरस का पीछे जाते हैं, फिर आगे आते हैं, फिर पीछे जाते हैं, चूंकि और जाहिर है कि ये सामईन जो हमारे हैं उनके लिए एग्जॉस्टिव गुफ्तगू तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो जरा मुश्किल मामला है कि आप 40-50 मिनट में रेडियो की पूरी तारीख बयान कर दें, मगर एक आगाही, एक शनासाई जरूर हो सकती है। रेडियो पाकिस्तान से मुताल्लिक आरिफ साहब किताबें भी लिखी गई हैं, उनका अगर कुछ तस्करा आप करना चाहें ताकि हमारे सामईन तक पहुंचें कि वो किताबें क्या हैं, कौन सी हैं, और साथ साथ एक गुजारिश मेरी ये भी थी कि कौन से ऐसे मारूफ नाम हैं जो आपके जहन में इस वक्त आ रहे हैं
چونکہ آپ نے ذکر کیا شاعروں اور ادیبوں کا کہ ہمارے شعراء اور ادیبوں میں سے, کیونکہ گانے والوں کا جو ہمارے گائک گزرے ہیں یا جو فنکار ہیں سازندے ہیں, یا ریڈیائی ڈرامے پہ ہم نے بات نہیں کر پائے بہت زیادہ آج, لیکن ایک ریڈیائی ڈرامے کی بھی پوری ہمارے یہاں تاریخ رہی ہے, تو ان میں کون ایسے لوگ تھے جو ریڈیو سے وابستہ رہے ہمارے مشاہیر میں سے؟
جی ہاں, اس سے پہلے میں تھوڑی سی یہ جو بات کی انہوں نے بڑی امپورٹنٹ, سخلین صاحب نے, انہوں نے کہا کہ کریڈ کے باعث کس طرح خبر کی زبان بدل گئی. جی یہ بالکل صحیح بات ہے, نہ صرف زبان بدلی بلکہ پیشکش کا انداز بھی بدل گیا. مثلا پہلے کبھی اس طرح کی لینگویج نہیں ہوتی تھی خبروں میں کہ یو ول بی پیئنگ مور فار یور الیکٹریسٹی بل فرام دا نیکسٹ منتھ. خبر ہوتی تھی کہ آئندہ ماہ سے بجلی کے بلوں میں 15% اضافہ کیا جا رہا ہے. براہ راست ہم سامعین سے مخاطب نہیں ہوتے تھے. یہ ریڈیو کی ٹیکنیک تھی کہ جس میں خبروں میں بھی انہوں نے براہ راست مخاطب ہو کے سامعین سے بات کرنی شروع کی. تو یہ بھی اس لینگویج کی چینج کا یہ بھی ایک اہم حصہ تھا کہ نہ صرف زبان بدلی بلکہ انداز بھی بدل گیا بات کرنے کا, ایک چیز. اچھا, دوسری آپ نے یہ پوچھا کہ جو مشاہیر ریڈیو سے وابستہ رہے, تو یہ سلسلہ تو جیسے میں نے کچھ نام لیے تھے, مثلا سعادت حسن منٹو نے پورا ایک سلسلہ لکھا آؤ کے نام سے جو کتابی شکل میں بھی, یہ ریڈیائی ڈرامے تھے ان کے. اب وہ ریڈیو میں چونکہ باقاعدہ ملازم ہو گئے تھے تو ان کو ٹیکنیک آ گئی تھی کہ ریڈیو میں بات کس طرح کرنی. اب آپ وہ پڑھیں تو اس میں مکالمہ چل رہا ہے, میاں بیوی کا مکالمہ چل رہا ہے, بیوی کچھ کہہ رہی ہے, میاں کچھ کہہ رہا ہے, بیوی کچھ کہہ رہی ہے, اور وہ ایک تسلسل ہے اور ایک روانی سے چل رہا ہے. یہ ٹیکنیک انہوں نے سیکھ لی تھی کہ ریڈیو پہ جو بات ہوگی وہ اگر مکالمے کی شکل میں چل رہی ہے تو لوگوں تک براہ راست پہنچے گی. تو منٹو سے پھر دوسرے لوگوں نے بھی سیکھا, مثلا عشق جو ان کے بہت قریب تھے, کیا نام تھا عشق کا پورا؟
اپندرناتھ
عشق. اپندرناتھ عشق نے اسی ٹیکنیک پہ پھر ڈرامے بھی لکھے, مکالمے بھی لکھے. ان کے علاوہ جو میں نے بتایا کہ نون میم راشد تو باقاعدہ یعنی ایک بڑے افسر کے طور پہ ریڈیو آل انڈیا ریڈیو میں موجود تھے.
پاکستان کی میں بات کروں جی, 47 کے بعد,
47 کے بعد یہ ہوا کہ منٹو صاحب آ گئے پاکستان
جی,
تو یہاں آ کے انہوں نے جو اپنی روزی روزگار کے لیے کچھ کہانیاں لکھیں اور ریڈیو کے لیے بھی وہ لکھتے رہے یہاں آنے کے بعد بھی, کیونکہ ان کا تجربہ تھا. اور پاکستان میں جو ادیب تھے, ایمن ادیم قاسمی تھے, اشفاق صاحب تھے,
اشفاق احمد صاحب,
اب اشفاق احمد صاحب کا تذکرہ ریڈیو کے سلسلے میں اس لیے خصوصیت
شامل
ہے. ہاں, یہ ایک پروگرام تھا حسرت تعمیر, اصل میں اس کا نام تھا حسرت تعمیر, جس میں ایک منافق آدمی کا پورٹریٹ تھا جس کا ایک بڑا سیدھا سادہ سا ملازم ہے, وہ نذیر حسینی وہ رول کرتے تھے, اور اس منافق آدمی کا رول خود خان صاحب کرتے تھے. تو اس میں ہر دفعہ یہی ہوتا تھا کہ وہ کسی فراڈ کے ذریعے کچھ حاصل کر لیں, اور کسی کو باتوں میں لگا کے کچھ حاصل کر لیں, یا کسی سے باتوں میں کچھ مفاد حاصل کر لیں. تو وہ ایک بے ایمان آدمی کا, منافق آدمی کا انہوں. اچھا, یہ اتنا پاپولر ہوا, اس کا نام تلقین تھا اس آدمی کا,
جی جی,
پروگرام کا نام حسرت تعمیر تھا, اور یہ عرصہ دراز تک حسرت تعمیر کے نام سے 60s میں چلتا رہا. بعد میں آ کے تلقین شاہ کی شہرت کی وجہ سے انہوں نے اس کا نام تلقین شاہ ہی رکھ دیا اس پروگرام کا نام, اور یہ عرصہ دراز تک چلنے والے پروگراموں میں سے, مطلب جو دنیا کے.
اچھا یہ بتائیے, لیکن یہ لاہور ریڈیو کا تو کافی تذکرہ ہوا چونکہ آپ اس سے وابستہ رہے, کوئٹہ کا بھی ہم نے تذکرہ کیا. کوئٹہ میں آپ کی, میں نے ایک تحریر میں پڑھا تھا کہ آپ کو کوئٹہ کی, کوئٹہ ریڈیو میں کام کے دوران آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ جو زبان کوئٹہ میں بولی جاتی ہے وہ پاکستان کی لنگوا فرانکا بن جائے گی. اور تو پشاور میں, کوئٹہ میں, حیدرآباد میں, ملتان میں, جہاں جہاں ریڈیو اسٹیشن قائم تھے وہاں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مقامی ادیب اور شاعر, ان میں سے بعض محض مقامی نہیں ہیں, یعنی ان کی بڑی ایک عالمگیر شہرت بھی ہے اور ملگیر شہرت بھی پائی ان میں سے کچھ نے, لیکن وہ ریڈیو سے وابستہ رہے. تو ریڈیو ایک طرح سے, ریڈیو پاکستان خصوصاً, ایک طرح سے روزگار کا ذریعہ بھی بنا علم و فن سے متعلق لوگوں کے لیے, محض صحافیوں کے لیے نہیں. تو کچھ ایسے صداکار یا کچھ ایسے گلوکار یا جیسے میں نے کہا کہ کچھ ادیب, جیسے آپ نے منٹو صاحب کا تذکرہ کیا, ان کا بھی کوئی, ان کے بھی بتائیے کہ ان کے یعنی کون لوگ تھے وہ, اور ریڈیو سے کیا اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ گزارا کر لیتے تھے یا قسم پرسی میں ہی رہے؟
دیکھیے, ریڈیو کبھی بھی کسی ادیب کے لیے فل ٹائم روزگار کا وسیلہ تو نہیں بنتا.
جائے کہ آپ پروڈیوسر ہو جائیں قمر جمیل کی طرح یا ضمیر علی
بدایوں کی طرح, آپ ملازم ہو گئے نا. لیکن اگر آپ فری لانسر ہیں تو ایک ادیب کے طور پہ آتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ, اس وقت کیا تھا, آپ فیچر لکھتے تھے 25 روپے آپ کو فیچر کے ملتے تھے, ڈرامہ لکھتے تھے 50 روپے آپ کو ڈرامے کے ملتے تھے. تو یہ ظاہر ہے انفلیشن کے حساب سے اس زمانے میں کوئی چھوٹی رقم نہیں تھی, لیکن پھر بھی ایک پورا گھر چلانے کے لیے تو کافی نہیں ہے. تو ادیب کے لیے یہ ہمیشہ ایک سائڈ بزنس تھی کہ اس کو کچھ اضافی انکم ہو جائے. مطلب کوئی ادیب ایسا نہیں تھا کہ جو, دو مثالیں صرف ہیں, ایک اے حمید اور ایک وہ کراچی میں تھے, ان کا نام مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا. یہ دو افراد تھے جنہوں نے فل ٹائم ریڈیو کو پیشہ بنایا اور اس سے کمایا,
اور بغیر ملازم ہوئے,
بغیر ملازم ہوئے فری لانسنگ میں انہوں نے کمایا. لیکن یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی, لوگوں نے یہ ایک اضافی انکم کے طور پہ اس کو لیتے تھے, ملازمت کہیں اور کرتے تھے. مثلا کوئی ٹیچر ہے, کوئی اخبار میں ملازم ہے, کوئی کالم نگار ہے, ساتھ وہ ریڈیو میں کچھ کام کر لیتا, اس سے اضافی انکم ہو جاتی.
ثقلین, آخری سوال آپ سے میں کروں گا کہ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ویسے تو آپ نے پچھلے جواب میں کچھ مستقبل کی طرف نشاندہی کی اور یہ سوال اٹھایا, بلکہ سوال کیا اٹھایا, آپ یہ, آپ نے اس یعنی اس نتیجے پر آپ پہنچے ہیں, یہ نتیجہ اخذ کیا ہے آپ نے کہ جب تک کریٹو انداز سے, تخلیقی انداز سے یہ کام نہ کیا جائے تو ریڈیو اپنی موجودہ شکل میں ایک میڈیم کے طور پہ برقرار نہیں رہے گا. ٹیکنالوجی تو دیکھیے بدلتی رہتی ہے, لیکن وہ ریڈیو ٹاک تو بہرحال ہے, ہم کر رہے ہیں اس وقت ایک پوڈ کاسٹ ہی کر رہے ہیں. اور تو سوال یہ ہے کہ کیا, جہاں بہت سے کمرشل ٹیلی ویژن کے, کمرشل ریڈیو کے مسائل ہیں جن کی آپ دونوں نے نشاندہی کی, مثال کے طور پر کوئی کمرشل ٹیلی ویژن یا جو پرائیویٹ ٹیلی ویژن یا پرائیویٹ ریڈیو ہے وہ کنٹریبیوٹرز کو کچھ پے نہیں کرتا. ریڈیو پاکستان, پاکستان ٹیلی ویژن تو پے کیا کرتے تھے, بی بی سی بھی ایک زمانے میں کرتا تھا, لیکن اب
ابھی بھی
کرتا ہے. تو اب اگر آپ سے سوال یہ ہے کہ ان میں ایک خوبی بھی تو تھی کہ وہ کم از کم پیسے دیتے تھے اور ایک خیال رکھتے تھے, مگر جو کمرشل جو ریڈیو آیا ہے یا جو پرائیویٹ ٹیلی ویژن اور پرائیویٹ ریڈیو آیا ہے, اس نے اسپیس بڑھا نہیں دی. مطلب اس میں یہ مواقع نہیں پیدا ہو گئے کہ ہم ریڈیو اور پاکستان کے حوالے سے ایک ایک گھنٹے کا پوڈ کاسٹ کر لیں, یہ ریڈیو پاکستان پہ, پاکستان ٹیلی ویژن پہ تو ممکن نہیں تھا.
دیکھیے,
تو دونوں پہلو
اصل میں نا, آپ کی باتوں میں کئی چیزیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں, ہم سب کے لیے ابھی یہ نہیں پتا کہ چیلنج ہے کیا. تو لہٰذا آپ کا جو سوال جو ہے یہ بھی ایک فریمڈ صحیح کوشچن نہیں ہے کہ آپ, مطلب آپ نے ایک ہی بات میں کئی باتیں کہنے کی کوشش کی ہیں, جس سے وچ انڈیکیٹس کہ وی اوور آل ایز آل ہو ہیو گاٹ اسٹیکس ان ریڈیو, جن ہم سب کی, جن کا ہے
جی
خواہش کہ ریڈیو بچے یا نہ بچے جو بھی ہے, وہ خود واضح نہیں ہے کہ ہمارے چیلنج کے اور رستہ کیا ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے. تو یہ چیز رکھتے ہوئے ذہن میں, جو میں نے عرض کرتا ہوں, جب میں کریٹیویٹی کی, تو کریٹیویٹی کا ہرگز مطلب ہے کہ کوئی بڑا شاعر پیدا ہوگا یا کوئی بڑا مصور پیدا ہوگا یا کوئی بڑا لکھاری پیدا ہوگا تو کوئی کریٹیویٹی ہوگی. کریٹیویٹی صرف یہی ہے کہ میں کس طرح لوگوں کو سے گفتگو کروں کہ وہ انگیجڈ ہو جائیں مجھ سے. ریڈیو جب ایک منوپلی تھی اسٹیٹ کی, تو اس وقت ریڈیو ہی واحد ذریعہ تھا جس کے ذریعے آپ لوگ, کئی لوگوں کی, یعنی کئی لوگ, لاکھ لوگ جو ہے یا ہزار لوگ جو ہے ایک آدمی کی آواز سن رہے ہیں, تو وہ ایک منوپلی تھی, لہذا وہ ایک بہت بڑی طاقت تھی. اب کئی چینلز آ گئے ہوئے ہیں, اب ان کے سامنے کیا ہے مسئلہ, ان کے سامنے اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے کہ یہاں پہ دو پہلو ایک یہ بنتے ہیں, ایک تو یہ موضوع بنتا ہے کہ کیا یہ وہ اس طرح کی ٹاکس شروع کر سکتے ہیں جو پہلے روایتی ریڈیو میں رہے, ممکن ہے کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, کیونکہ اب ایک اور نئی چیز ایک آ گئی بھی ہے کہ ریڈیو میں ون سائڈڈ گفتگو کر رہے ہیں, آپ بولتے چلے جا رہے مولوی کی طرح, کوئی آپ کو چیلنج بھی نہیں کر سکتا, آواز دیے جا رہے ہیں بیکار یا اچھا جو بھی ہے, آپ علامہ اقبال ہوں یا سر سید احمد خان ہوں یا کوئی بھی اللہ رکھا پیپسی ہیں, آپ جو بھی ہیں بولتے چلے جا رہے ہیں, آپ کو فیڈ بیک یا ہوٹنگ پتہ ہی نہیں چل رہی ہے, آج لوگ فوراً آپ کو سوئچ آف کریں گے, دوسری جگہ چلے جائیں گے یا ریڈیو بند کر دیں گے, جیسے کہ ریڈیو بند ہو رہا ہے. تو اس میں آپ کو انگیج کرنا ہے. انگیج کرنے کے کیا طریقے ہیں, وہ پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا طریقے ہیں, دوسرے یہ دیکھ رہے ہو کیا کانٹینٹ آنا چاہیے میری طرف سے, پھر آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جن کو انگیج کرنا ہے وہ کیا چاہ رہے ہیں, آڈینس جو ہیں وہ. اگر آپ دیکھیں, اب آپ کے سامنے ینگر جنریشن ہے, پاکستان کی آبادی میں 65% لوگ جو ہے انڈر 30 ہیں, 65% آبادی جو آپ کی وہ انڈر 30
برس سے کم ہے,
ٹھیک ہے,
65% لوگ 30 سال سے کم عمر,
30 سال سے کم عمر,
تو انہیں کیسے
آپ ان کو کیسے انگیج کریں گے, وہ کس طرح سننا چاہ رہے ہیں, اگر وہ غلط ہی چیز سننا چاہ رہے ہیں تو سنائیں, یا آپ جج کر رہے ہیں نا کہ وہ غلط چیز سننا چاہ رہے ہیں, میں کیسے سنا دوں, نہیں, یہ ہمیں بھی اس پیڈسٹل سے نیچے اترنا ہے کہ میں جو آواز دے دوں گا لوگ سنیں گے. یعنی جو کانٹینٹ جنریٹ کر رہے ہیں یا کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, ان کو بھی ممبر سے اترنا پڑے گا.
خواتین و حضرات, اسی نوٹ پر, اور یہ بالکل آپ نے ثقلین بالکل ٹھیک بات کی کہ ہمیں بہت سے چیلنجز کا خود اندازہ نہیں ہے, ہماری دلچسپی اس بات میں تو بالکل ہے کہ ریڈیو قائم رہے, مگر کمرشل سپیسز کے جو پروز اینڈ کونز ہیں, کمرشل سپیسز کریٹ ہونے سے شاید میرے نزدیک سپیس میں اضافہ ہوا ہے کانٹینٹ کی, مگر وہ سپیس ایک مخصوص کانٹینٹ ہی سے بھری جا رہی ہے, اس اضافے کو شاید ہم اب پوری طرح سے, یعنی جو سپیس میں اضافہ ہوا ہے اسے استعمال نہیں کر پا رہے. لیکن ساتھ ہی کریٹیوٹی, تخلیقیت بہت ضروری ہے, اور آگے کیسے چلنا ہے یہ چیلنج ہمیں درپیش ہے. اور ظاہر ہے کہ میں بہت یعنی ایمانداری کی بات یہ ہے کہ بہت سے سوالات کے ہمارے پاس جواب نہیں ہے, لیکن مکالمہ آپ لوگوں کی وجہ سے آج آگے بڑھا اس موضوع پر. میں بہت ممنون ہوں, شکر گزار ہوں عارف وقار صاحب آپ کا, ثقلین امام صاحب آپ کا, کہ آپ دونوں نے وقت نکالا اور ہمارے سامعین کے لیے یقیناً ایک معلومات افزا گفتگو رہی ہوگی. بہت بہت شکریہ.
اس پوڈ کاسٹ میں پیش کی جانے والی گفتگو شرکا کی ذاتی رائے پر مبنی ہے, وائس آف امریکہ کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں.
پاکستان کی آزادی کے 75 سال, اس موقع پر وی او اے اردو آپ کے لیے ایسی کہانیاں اور گفتگو لا رہا ہے جن میں بات ہوگی پاکستان کے سیاسی, ثقافتی اور معاشرتی تنوع کے ہر پہلو پر. ہم پیش کریں گے مختلف نقطۂ نظر اور فکر انگیز خیالات. اس تاریخی موقع پر وی او اے اردو کی نشریات سنتے رہیے. اس خصوصی پوڈ کاسٹ کی اگلی قسط میں ہم بات کریں گے پاکستان کی مقامی زبانوں اور ان میں لکھے جانے والے ادب پر.